गुड इवनिंग, नमस्कार, ओम शांति। आप सबका इस परिसर जिसका कि नाम एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड है, जिसको हम ज्ञान सरोवर भी कहते हैं, इस परिसर में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। दिस कॉन्फ्रेंस कम मेडिटेशन रिट्रीट ऑन द टॉपिक एनविजनिंग फॉर ए बेटर टुमारो, उसके रिसेप्शन सेशन में भी आपका हार्दिक अभिनंदन है। I would like to invite the guest on the dais, Shri Rajyogi Mohan Singhal Bhai Sa, Brother Narendra Patel, Sister Rupa Behen, our special guest Lieutenant Colonel Doshi Y. Seema from Nagaland, Kohima. Dr. J.J. Rawal, former President of Indian Planetary Society, Halvard. Sister B.K. Indra Behen, Mr. Divakar Agarwal, Director, CPWD, Government of India, New Delhi. Rajyogini B.K. Kiran Didi, सब डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी काठमांडू नेपाल। आप सब से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। आप तालियां बजा सकते हैं हमारे माननीय अतिथियों का, जो कि आज के मंच की शोभा है। इस मेडिटेशन कम कॉन्फ्रेंस के रिसेप्शन सेशन में कार्यक्रम का शुभारंभ हम 3 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, उससे हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। जीवन से सबको वो सुख देता रे, शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता रे, जैसे बल से झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है, निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचिता अपना जहां सुंदर रचिता अपना जहां ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान बन जाए वो गुणवान।
ओम शांति। एनविजनिंग फॉर ए बेटर टुमारो, कल के लिए हमारा क्या दृष्टिकोण है, कल हमारा कैसा होना चाहिए। अगर हम आज के संसार की बात करें तो शायद उसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम सब देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं और अंदर ही अंदर ये भी महसूस कर रहे हैं हम कैसे संसार में रह रहे हैं। आप सबको लगता है कुछ फीलिंग होती है अंदर। हम न्यूज में देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, अंदर से वो गीत कवि प्रदीप का कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मैं भी अगर अपनी लाइफ, इस प्रेजेंट लाइफ को देखूं तो हमारा जो पास्ट था काफी अच्छा था, एज कंपेयर टू टुडे काफी अच्छा था। इट वॉज नॉट डिग्रेडेड टू दिस एक्सटेंट टुडे। आज पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अब लगता है अंदर से कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के हमारे जो चेयरपर्सन हैं उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस विषय के ऊपर हम चर्चा करें थोड़ा सा। आप सब भी जब इस परिसर में अंदर प्रवेश किए तो कैसा अनुभव हुआ आपको, कैसा लगा? बाहर के वातावरण से यहां के वातावरण में कुछ चेंज नजर आया आपको? आपको फीलिंग्स कुछ आई अंदर अंदर फीलिंग? ऑब्वियसली दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड। इसके बारे में हम, इस इंस्टीट्यूशंस के बारे में, इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में हम सुनेंगे आज के सेशन में। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, एक इंसिडेंट मैंने सुना था कहीं पर। एक बार बनारस में तीन दोस्त गंगा के घाट पर बैठे हुए थे। अब बनारस में तो हम सब जानते हैं कि वहां का जो एक इंटॉक्सिकेशन होता है वो भांग का एक इंटॉक्सिकेशन है। तो वहां पर वो लोग अपने भांग सेवन किए हुए थे, तो भांग सेवन करने के बाद उनको नेचुरली उनके मन में विचार एक डिफरेंट सा आना शुरू हो गया। तो वो तीनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि भाई हमने जीवन में सब कुछ देख लिया है परंतु हमने मर के नहीं देखा। तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि चलो वन बाय वन हम लोग मर के देखते हैं। अब वो देवर अंडर द इंटॉक्सिकेशन, तो उसी तरीके के विचार उनके मन में चल रहे थे। ये तो उसमें से एक जो था वो लाइट ऑन हो गया और बाकी दो ने उसको जो है ना एक अर्थी सी बना करके वो चल रहे थे, राम नाम सत है, राम नाम सत है। तो जैसे वो घाट पे जा रहे थे तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहे थे आगे से पुलिस वाला आया, तो उसने कहा कि भाई तुम्हें मालूम नहीं कि रास्ता जो है शमशान घाट को नहीं जाता है? वो कहते हो सॉरी हमें मालूम नहीं, जाओ यहां से दूसरी तरफ चले जाओ। वो दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया उन्होंने। जब वो दूसरी डायरेक्शन में गए तो फिर पुलिस वाला आ गया, वो कहते भी तुम्हें तो हमने दूसरी डायरेक्शन बताई थी, तुम इस साइड क्यों जा रहे हो, ये रास्ता घाट को नहीं जाता है। फिर उन्होंने कहा कि सॉरी, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में चले गए। ऐसे वो गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर पुलिस वाले ने उसने अपने तरीके से डांटा जब उसको कि तुम्हें मालूम नहीं है कि रास्ता घाट को नहीं जाता है। तो उसमें जो वो एक्ट कर रहा था ना मरने वाला, उसने कहा कि साहब रास्ता तो हमें मालूम है, रास्ता तो हमें मालूम है, परंतु क्या करें, हम तो मरे पड़े हैं। आज कुछ समाज की, मानव की हालत ऐसी हो गई है। तो इस कॉन्फ्रेंस में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स और मिलेंगे जिससे कि हमें अंदर प्रेरणा मिले कि हमें क्या करना है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस डायरेक्शन में पिछले मोर देन 86 इयर्स काम कर रहे हैं फॉर बेटर वर्ल्ड। फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रह्मा कुमारी इसका है, व्हेन आई चेंज द वर्ल्ड चेंजेस, व्हेन आई चेंज द वर्ल्ड चेंजेस। आज का जो हमारा ये सेशन है रिसेप्शन सेशन, इस पे कुछ चर्चा होगी, इंग्रेडिएंट्स फॉर द बेटर फ्यूचर। लाइफ के चार इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। अनफॉर्चुनेटली आज चारों ही हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर हमें रीथिंकिंग करने की जरूरत है। हम कहां पहुंच गए हैं आज आकर के, टेक्नोलॉजी वाइज इंसान चांद पे चला गया है, टेक्नोलॉजी वाइज हम इतने आगे चले गए हैं कि ह्यूमन बीइंग हैज प्रैक्टिकली बिकम रिडंडेंट। आज हमें 2+2 4 पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है जब तक हम अपने कैलकुलेटर पे चेक ना कर ले कि 2+2 4 होता है। मुझे याद है बचपन में हमें जो टेबल्स पहाड़े पढ़ाए जाते थे ना, वो आज भी हमें याद है, नॉट ओनली अप टू 20, उसमें हमें 1.5 1.5 ऐसा भी पहाड़ा हमें पढ़ाया जाता था जो आज हमें भी याद है। आज के बच्चों में शायद वो चीजें नहीं हैं। तो वो जो चेंजेस हमारे लाइफ में आए हैं, हमारे सोसाइटी में आए हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, सब जगह ये चेंजेस जो आ गए हैं, इसीलिए आज ये कॉन्फ्रेंस जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं टू थिंक अबाउट फॉर बेटर टुमारो। मैं अपनी ब्रह्मा कुमारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे स्टेज डायस पे जो हमारे गेस्ट बैठे हैं उनका बैजेस और बुके से स्वागत करें। हमारे बीच कोहिमा से हमारे फॉर्मर मिनिस्टर आने वाले हैं, वो पहुंच चुके हैं, थोड़ी समय में ही वो हमको ज्वाइन करेंगे। इसके बाद वेलकम डांस के लिए मैं कुमारी श्रद्धा को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रेडी रहे। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत की श्रृंखला में आई रिक्वेस्ट कुमारी श्रद्धा फ्रॉम शांतिवन फॉर वेलकम डांस। कुमारी श्रद्धा,
शत स्वागतम शुभ स्वागतम।
सिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से।
मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से।
स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले विश्वासों में हिले मिले सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है। धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है।
स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है।
तभी तो परिवर्तन का नारा, तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है।
आगमन से आपके आनंद ही आनंद है
आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अनंत है। आगमन से आनंद ही आनंद है शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम
शुभ स्वागतम
शुभ स्वागतम।
जोरदार तालियों से स्वागत कुमारी श्रद्धा का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रद्धा आप आइए, हमें दीदी आपको बुके से आपका भी स्वागत करेंगे। तालियों से श्रद्धा का स्वागत। हमारा ये कार्यक्रम आप सबको हम इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि इस वक्त यूट्यूब पर, अवेकनिंग टीवी पर और पीस ऑफ माइंड पर लाइव जा रहा है। तो अगर आप अपने वेल विशेस को या रिलेशन में भेजना चाहते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आप भेज सकते हैं। ये इस वक्त लाइव जा रहा है प्रोग्राम। नाउ अभी थोड़ी देर में हमारे कोहिमा से जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं वो भी पहुंच गए हैं। ही इज ऑल्सो अबाउट टू ज्वाइन अस। इंग्रेडिएंट फॉर बेटर टुमारो। आप भी थोड़ा इस समय जो हमारे पास तीन दिन यहां मिल रहे हैं आपको, विचार करें और अपने विचार भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप कैसा भविष्य चाहते हैं, कैसा कल चाहते हैं, आप उस चीज को कैसा होना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी इसका तो विजन है, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ दिस 2-3 डेज। आपसे शेयर किया जाएगा इन चीजों को, आप कैसा चाहते हैं। एक बार हमारा एक इंटरनेशनल में भी समटाइम्स बैक 95 में एक इंटरनेशनल प्रोग्राम इन एसोसिएशन विद यूनाइटेड नेशन लॉन्च हुआ था और उसमें काफी बड़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों से फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से विजन्स लिए थे कि हाउ दे वांट द बेटर वर्ल्ड। बहुत सुंदर सुंदर विचार आए थे। हम सब चाह रहे हैं, हमारे अंदर में भी वो काफी विचार हैं कि हमारा कल कैसा होना चाहिए। तो आप भी थोड़ा इसके ऊपर विचार कीजिए और आपके साथ भी हम विचार शेयर करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे रिस्पेक्टेड ब्रदर नरेंद्र पटेल जी, जो कि पिछले 50 ईयर से डेडिकेटेड लाइफ से सर्विस कर रहे हैं यहां पर ब्रह्मा कुमारीज में विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। अच्छा, विल वेलकम अवर ऑनर्ड गेस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल दोष जी वाई सीमा फ्रॉम नागालैंड। सर यू आर वेलकम एंड वी ऑल्सो वेलकम सिस्टर बी के रूपा बहन, डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारीज कोहिमा नागालैंड। तालियों से हम अपने माननीय मेहमान का हम स्वागत करेंगे और मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे मेहमान का बैजेस और बुके से स्वागत करें। नाउ रिक्वेस्ट ब्रदर नरेंद्र पटेल टू लेट अस नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन ब्रह्मा कुमारीज। ये ब्रह्मा कुमारीज के बारे में हम सबको अवगत कराएंगे ब्रदर नरेंद्र पटेल। ओके, आई विल रिक्वेस्ट अवर चेयरपर्सन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग अवर रिस्पेक्टेड ब्रदर मोहन सिंगल जी टू गिव अस वेलकम एड्रेस एंड अबाउट ज्ञान सरोवर एंड अबाउट द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ब्रदर मोहन सिंगल जी।
ओम शांति। एक बार पुनः हम सब मिलकर के ओम शांति उस रीति से बोलेंगे जैसा कि इस संस्था के स्टार्टिंग में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा स्थापक साकार इस इंस्टीट्यूशन के जो थे उनके साथ सब ब्राह्मण वत्स बोला करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और दूसरा गहरा श्वास लेंगे उसको निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ज्ञान सरोवर के इस पुष्पित पल्लवित स्थल पर आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मैं मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जो हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। वो हमारे एक दिवाकर अग्रवाल जी आए हुए हैं, धन्यवाद अतिथि विशेष। हमारे सम्माननीय अतिथि जो बहुत विशेष दूर से आए हैं और जो वास्तव में एक तरीके से ये प्री इनॉग्रल जैसा सेशन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल दोशे वाई सेमा जी, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ नागालैंड कोहिमा, इनका बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आप समझ सकते हैं कोहिमा नागालैंड से आप विशेष इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं इनकी टीचर बहन रूपा बहन जी का, अगर वो आ गई हो तो कृपया मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करें रूपा बहन जी और अपना स्थान लें। साथ ही साथ सभा में उपस्थित हमारी ब्लेसिंग्स देने वाली के लिए विशेष पधारे नेपाल से। हमारा यह कार्यक्रम राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय जैसा है क्योंकि नेपाल से काफी अतिथि पधारे हैं। तो राजयोगिनी बी के किरण दीदी जो विशेष ब्लेसिंग्स देने के लिए नेपाल काठमांडू से पधारे हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इनके साथ साथ हमारे एक अतिथि विशेष डॉक्टर जे जे रावल जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन प्लेनेटरी सोसाइटी, गुजरात से आए हैं, आपका भी बहुत बहुत विशेष अभिनंदन है। हम सब जिस युग में जी रहे हैं आप सब जानते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर यूनाइटेड नेशन ने भी हमारी संस्था को इसके विशेष निमंत्रण पर 21 जून को का दिवस इंटरनेशनल योग डे के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है और हम सब मनाते हैं। तो आज विशेष उस योग का अभ्यास कराने के लिए हमारे बीच में जो पधारी हैं बहन इंदिरा जी, राजयोग का टीचर जो माउंट आबू से हेडक्वार्टर से पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। नरेंद्र पटेल जी जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, फॉर्मर इंजीनियर और बड़ौदा से आए हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और सभा का जो संचालन कर रहे हैं भ्राता सुरेश गुप्ता जी जो आपके सम्मुख थे, उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले आप सभी भाई बहनों का स्वागत जो सभा में उपस्थित हैं, रह सब इस स्वागत के अधिकारी हैं क्योंकि इस परिस्थितियों में जो वर्तमान समय देश और विश्व में परिस्थितियां हैं, नॉर्मल से थोड़ा डेविएटेड हैं, फिर भी आप समय निकाल के जो यहाँ पधारे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है। मैं इस विषय में और रूपा बहन जी हैं जो विशेष हमारे अतिथि विशेष मुख्य अतिथि जी को लेकर के आए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को, रूपा बहन जी उनका भी बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। रूपा बहन जी आप आ गए हैं, अच्छा। आप जिस प्रांगण में पधारे हैं मुझे विश्वास है कि आप जब जिस क्षण से यहाँ आए होंगे एक अद्भुत शांति और सुखद अनुभूति आपको हो रही होगी। जिस हॉल में हम बैठे हैं और ये पूरा प्रांगण हमारा ये लगभग 40 एकड़ के अंदर बना हुआ है और इस हॉल को हम हार्मनी हॉल कहते हैं, इस कारण से कि आज विश्व की सभी समस्याओं का मूल कारण डिसहार्मनी है, चाहे बाहर के क्षेत्र में हो चाहे हमारे आंतरिक क्षेत्र में हो। और उस हार्मनी को लाने के लिए, हार्मनी बिटवीन हेड हार्ट एंड हैंड, ये हार्मनी की आज आवश्यकता है, उसको लाने के लिए यहाँ पर सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसलिए इस हॉल का नाम हार्मनी हॉल विशेष रखा गया है। लगभग 1600 की कैपेसिटी का ये हॉल है और इसमें केवल राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं, अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम विश्व भर में इस संस्था की के जो केंद्र है, लगभग 140 देशों में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के केंद्र हैं, तो वहां से आने वाले डेलीगेट्स वो आते हैं और उनके द्वारा ये कार्यक्रम समय प्रति समय किए जाते हैं। इसलिए ये हार्मनी हॉल जो है लगभग सभी देशों को केटर करता है, वहां के डेलीगेट्स आते हैं और यहाँ का लाभ उठाते हैं। इस हार्मनी हॉल के नीचे ही एक मेडिटेशन हॉल है लगभग 300 की कैपेसिटी का, उसमें हमारा दिन जो है लगभग 3:30 बजे से सुबह शुरू हो जाता है और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं विशेष करके, और वहाँ पर हमारे अनेक कार्यक्रम भी होते हैं। कल आप लोगों का भी एक कार्यक्रम, एक वर्कशॉप वहाँ पर नीचे होगी और उसमें आप सब, आप में से कुछ लोग जो जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो आपके बैच में ग्रुप्स संख्या डिवाइड की गई होगी, आपने देखा होगा ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, तो एक ग्रुप नीचे हमारे मेडिटेशन हॉल में भी चलने वाला है वहां पर। यहीं पर इसी कॉम्प्लेक्स में हार्मनी हॉल के पीछे ही हमारा एक स्पिरिचुअल म्यूजियम है जिसमें भारतीय प्राचीन संस्कृति का बहुत उत्तम वर्णन है चित्र मॉडल ऑडियो विजुअल मीन्स के द्वारा, और पूरी भारतीय संस्कृति विशेष रूप से और विश्व भर की अनेक संस्कृतियों का चित्रण बहुत सुंदर रीति से किया गया है। आप आए हैं तो एक दिन उस म्यूजियम का भी अवलोकन करेंगे और उससे देखेंगे कि भारतीय संस्कृति अपनी चरम सीमा पर क्या थी और अब कैसे हम सब पुरुषार्थ करके उसे पुनः वापस अपने स्थान पर लाने के कोशिश में सब प्रतिबद्ध हैं। इसके सामने ही एक ट्रेनिंग सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर हायर लर्निंग नाम है उसका, वहां पर भी कल दोपहर आफ्टरनून में हमारे सेशंस होंगे। उधर 12-13 हॉल हैं अलग अलग और उन हॉल के अंदर वर्कशॉप्स जो होंगे, तो वहां पर एक स्पिरिचुअल स्पार्क नाम से भी एक हमारा डिपार्टमेंट है, स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर, वो भी आप सब लोग जब यहाँ घूमेंगे उसे देखेंगे। वहाँ पर हमारे लगभग 12-13 हॉल हैं, उन हॉल्स के अंदर पूरे वर्ष भर भारत से के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस अपने डेलीगेट्स भेजते रहते हैं, उनके भी कार्यक्रम चलते रहते हैं, आपको वो भी देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर हायर लर्निंग से जब फर्दर और डाउनवर्ड्स जाएंगे नीचे तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, डाइनिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर आप सब लोगों के भोजन की व्यवस्था है और उसके अंदर 7 अलग अलग हॉल हैं। ज़्यादातर तो फर्स्ट हॉल पर ही भोजन की व्यवस्था है, फिर भी कोई अति बुजुर्ग हैं तो नीचे ग्राउंड लेवल पर ही हॉल नंबर 1, 2 में वो उसका लाभ ले सकते हैं। और विशेष करके टीचर्स बहने भी ध्यान दें, क्योंकि जिनके साथ स्पीकर्स वगैरह भी आए हुए हैं वो लोग टीचर्स बहने भी ध्यान देकर 1 या 2 नंबर में नीचे ग्राउंड लेवल पर, और वैसे लिफ्ट का प्रबंध है, सभी लोग वो लिफ्ट को यूज करके उसमें जा सकते हैं। वो डाइनिंग कॉम्प्लेक्स बहुत उत्तम कोटि का है। इसके अतिरिक्त फर्दर जब आगे जाते हैं तो हमारे और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी हैं, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तो इधर ही है, इस हॉल के पीछे हार्मनी हाउस, वहां पर ठहरने का प्रबंध है। फर्दर जब आगे जाते हैं तो वहां पर और जितने भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में आप सब लोग में कोई हार्मनी हॉल में ठहरा होगा, कोई विश्व परिवर्तन क्या नाम है उसका नीचे, तो वहां और अलग अलग स्थानों पर आप सब लोग का निवास स्थान है, वहां ठहरे हुए हैं आप लोग। वैसे तो यहाँ पर आप जब से आए हैं आपको एक प्रकृति अभी तो साथ दे रही है, फिर भी जब ठंडी के दिन होते हैं, माउंट आबू हिल स्टेशन है तो ठंडी भी यहाँ काफी होती है, इसीलिए हमने अल्टरनेट एनर्जी का भी विशेष प्रबंध किया हुआ है, और नॉर्मल कन्वेंशनल एनर्जी के साथ साथ सोलर एनर्जी को हम बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं, केवल यहाँ ही नहीं बल्कि हमारे और कॉम्प्लेक्सेस में, जिसका वर्णन आपको हमारे नरेंद्र पटेल जी और कॉम्प्लेक्सेस का भी सारा बताएंगे। तो सोलर इससे केवल पानी ही गर्म नहीं होता जो आपको स्नान आदि के लिए रेजिडेंस में उपलब्ध है, बल्कि उससे हम इलेक्ट्रिक जनरेशन भी करते हैं, और इस रीति से पूरे हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर केवल प्रकाश के लिए बिजली का उत्पादन नहीं, बल्कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम, पूरे इमरजेंसी लाइट, ये सब हमारी अल्टरनेट एनर्जी सोलर एनर्जी से चलती है। और इतना ही नहीं, जब जो हमारे और भी कॉम्प्लेक्स हैं, जो जैसा बताया आपको बताया जाएगा, वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक जनरेशन इतना है नीचे लगभग 2 मेगावाट का, 1 मेगावाट से ज्यादा तो 1.25 हम कर रहे हैं, लेकिन और फर्दर तो जो केवल हमारे अपने लिए ही सफिशिएंट नहीं, बल्कि हम राजस्थान गवर्नमेंट को ग्रिड में भी उसको पूरा अभी कंप्लीट तो नहीं कर पाए हैं, मतलब 1.25 तो एज ऑन टुडे भी हम दे रहे हैं, लेकिन बहुत शीघ्र ही हम इतना और इलेक्ट्रिक जनरेशन कर पाएंगे, वो पूरे भारत भर में के लिए एक आइडियल है, क्योंकि नीचे जो इतना बड़ा सोलर कॉम्प्लेक्स है वो अपने आप में एक बहुत ही अनोखा है। आप सब लोग भी जब वापस जाएं तो ये कोशिश करें कि उस सोलर कॉम्प्लेक्स को भी अवश्य देखें। इसके साथ साथ जैसा मैं बता रहा था कि ये संस्था जो है, इसके कोर्सेज जो होते हैं वो एक होलिस्टिक नेचर के होते हैं, और होलिस्टिक नेचर माने जो यहाँ विशेष करके ज्ञान सरोवर में ये हमारा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है, बहुत सुंदर रीति से कोर्सेज डेवलप किए गए हैं। इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसके अंतर्गत 20 विंग्स, प्रोफेशनल विंग्स चलती हैं, और जिसमें से एक विंग तो यही है जिसका कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट विंग, लेकिन इसके साथ साथ मेडिकल विंग है, एडमिनिस्ट्रेटर विंग है, सोशल सर्विस विंग है, मीडिया विंग है, यूथ विंग है, वुमन विंग है, 20 विंग चलते हैं जिसमें सभी प्रोफेशन और सभी कैटेगरीज कवर हो जाती है। तो यहाँ ज्ञान सरोवर में इन विंग्स की कॉन्फ्रेंसेस लगभग अप्रैल मास से शुरू हो जाती हैं, अप्रैल में जून जुलाई तक और अगस्त तक ये कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं भारत की विशेष, और अगस्त के बाद से फिर रेनी सीजन में विशेष करके ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स के प्रोग्राम होते हैं, जो कि हमारे ट्रेनिंग में यही नहीं रहे सीमित हमारी ट्रेनिंग, बल्कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो पूरे भारत के कोने कोने में और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर भी, जैसा कार्यक्रम यहाँ होगा 3 दिन में आप देखेंगे, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में और अलग अलग जगह ऑर्गेनाइज करें। इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हम ये इंस्टीट्यूशन हमारी यूनाइटेड नेशन से भी संलग्न है, और यूनाइटेड नेशंस में एकोसॉक और यूनिसेफ जो जो उनके डिपार्टमेंट हैं उनसे कंसल्टेटिव स्टेटस का इस इंस्टीट्यूशन का संबंध है, वहाँ सारे कार्यक्रम होते हैं। तो जैसे अप्रैल से कार्यक्रम शुरू होते हैं पहले भारत के स्थानों के, उसके बाद ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, और अक्टूबर से लेकर फरवरी मास तक लगभग विश्व में, जैसा मैं बता रहा था हमारे लगभग 140 देशों में ये केंद्र है, वहाँ से डेलीगेट आते हैं और ओवरसीज ब्रांचेस के लिए ये कॉम्प्लेक्स हमारा बुक रहता है। जो ओवरसीज ब्रांचेस से डेलीगेट, जैसे आप सब इंडिया से अलग अलग स्थानों से आए हैं, ऐसे विश्व के लगभग 140 देशों से डेलीगेट्स आते हैं और वो ट्रेनिंग का लाभ लेते हैं, वो कार्यक्रम चलते रहते हैं। इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा ये एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही हमारा हेडक्वार्टर पांडव भवन कॉम्प्लेक्स है, केवल नाम बता रहा हूँ, और बीच में हमारा एक ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है फॉर पुअर एंड नीडी फॉर प्रोवाइडिंग द हेल्थ सर्विसेज, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज से युक्त रूरल जनता के लिए विशेष करके उसको खोला गया है, वो भी अपने आप में अति उत्तम है। और नीचे आबू रोड जहाँ जाएंगे वहाँ पर भी हमारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, शांतिवन कॉम्प्लेक्स है और मनमोहनी कॉम्प्लेक्स है आदि आदि, वो सारा वर्णन आपको यहाँ बताएंगे। मैं और अधिक समय न लेकर के मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब जो यहाँ आए हैं, विशेष एक बात को मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा, जैसे दुनिया में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, और तो यहाँ पर भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है हमारा, जहाँ टॉयलेट वेस्ट, किचन वेस्ट, सारा वेस्ट करके उसको बेस्ट में परिवर्तित करके हम यहाँ पर ग्रीनरी में यूज करते हैं, पूरे जो हमारी गार्डनिंग आदि है, ये तो बहुत जगह होता है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इस कॉम्प्लेक्स की है कि जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ऐसे हमारा थॉट्स रिसाइकलिंग प्लांट जो है, थॉट्स को कैसे हम रिसाइकिल करके आज के संसार में अधिकतर हमारे वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट्स भी काफी होते हैं जिनसे आप सब परिचित हैं, तो उन नेगेटिव थॉट्स को कैसे परिवर्तित करके केवल थॉट लेवल तक ही सीमित न रखें, और वो मेथोडोलॉजी खास यहाँ बताई जाती है, तो वो मेथोडोलॉजी को आप देखेंगे। और इसके लिए ही भारत की विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे जितने ONGC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, BHEL है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मुख्य ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर लोग आते हैं और इसका विशेष लाभ लेते हैं। तो मुझे आशा है कि आप भी जब यहाँ से वापस जाएंगे तो एक अद्भुत बदले हुए इंसान होंगे, और जो स्थिति में आप आए हैं और जब जाएंगे तो इतने पॉजिटिव रीति से भरपूर होंगे कि जैसा भाई जी बता रहे थे, ये वर्ष को हमने सेवा के लिए विशेष नाम दिया है ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज, तो वो आप सबका पॉजिटिव चेंज यहीं से ही शुरू हो गया है, आज से ही, आगे आने वाले 3-4 दिन में भी ये चलेगा, और वो पॉजिटिव चेंज आप लेके जाएंगे तो न केवल आप तक सीमित रहेगा बल्कि आप, आपका परिवार, संबंधी, समाज के अन्य वर्ग, इस प्रकार से सब में परिवर्तन आएगा। इस शुभ आशा के साथ मैं सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन।
हमारे आदरणीय मोहन सिंगल भाई साहब का भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स और अभिनंदन। जैसा कि भाई साहब ने बताया, ब्रह्मा कुमारीज का ये जो ये ईयर है, इसका थीम है ईयर फॉर पॉजिटिव चेंज। उसी सीरीज में ये कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। अब हमारे बीच हमारा एक बहुत ही सुंदर म्यूजिकल ग्रुप है जिसको हम मधुरवाणी ग्रुप कहते हैं, वो आप सबका स्वागत अभिनंदन गीत से करेंगे। इस मधुरवाणी ग्रुप की एक विशेषता है जिसके कि हम ये कहेंगे कि लीडर कहें या क्या कहें इनको हम, सतीश भाई साहब, इनके अंदर एक बहुत डिवाइन क्वालिटी है। इनको आप 15 मिनट पहले कोई एक टॉपिक दे दीजिए, उस टॉपिक पे ये गीत लिख करके और उसका म्यूजिक बना करके ये तैयार कर देते हैं, तो इनका हम अभिनंदन तालियों से करते हैं सबका। हमारे सामने जो ये गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो भी आज के इस थीम से ही रिलेटेड है, तो मधुरवाणी ग्रुप का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन।
ओम शांति। अरावली आबू पर्वत के शैल शिखर आपका अभिनंदन करते हैं। ज्ञान सरोवर में सजा दिव्य मनोहर ये दरबार, वैज्ञानिक अभियंता आए देखो बना विश्व परिवार, बेहतर कल के निर्माताओं स्वीकारो प्रभु प्यार, अपनों का अपने घर में अपनों द्वारा सत्कार, आपका स्वागत सौ सौ बार, अभिनंदन बारंबार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
सरोवर में सजा दिव्य मनोहर है दरबार, ज्ञान सरोवर में सजा दिव्य मनोहर है दरबार, वैज्ञानिक अभियंता आए देखो बना विश्व परिवार, बेहतर कल के निर्माताओं स्वीकारो प्रभु प्यार, अपनों का अपने घर में अपनों द्वारा सत्कार, आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन सौ सौ बार, आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन सौ सौ बार।
बात खुशी का अवसर है और दूर से आए आपकी तालियां।
विज्ञान और अध्यात्म का हो रहा मिलन सुहाना, होगा अब सुखमय संसार आएगा नया जमाना, विज्ञान और अध्यात्म का हो रहा मिलन सुहाना, होगा अब सुखमय संसार आएगा नया जमाना, आपसे होनी प्रभु योजना धरती पर साकार, ज्ञान सरोवर में, ज्ञान सरोवर में सजा दिव्य मनोहर है दरबार, वैज्ञानिक अभियंता आए देखो बना विश्व परिवार,
सासनी पानी सासनी पानी गगर गर गगर सासनी पानी गर
दर दर। आध्यात्मिकता के बिना पंगु हुआ विज्ञान, दोनों मिलकर छू लेंगे आशा का आसमान, आध्यात्मिकता के बिना पंगु हुआ विज्ञान, दोनों मिलकर छू लेंगे आशा का आसमान, कभी विधाता ने बुलाया आपको सोच विचार, ज्ञान सरोवर में, ज्ञान सरोवर में सजा दिव्य मनोहर है दरबार, वैज्ञानिक अभियंता आए देखो बना विश्व परिवार, आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर चले बेहतर कल की ओर। आशा और विश्वास की हो रही है स्वर्णिम भोर। आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर चले बेहतर कल की ओर। आशा और विश्वास की हो रही है स्वर्णिम भोर। शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारियां लुटा रही प्रभु प्यार ज्ञान सरोवर में। ज्ञान सरोवर में सजा दिव्य मनोहर है दरबार। वैज्ञानिक अभियंता आए देखो बना विश्व परिवार। बेहतर कल के निर्माताओं स्वीकारो प्रभु प्यार। अपनों का अपने घर में अपनों द्वारा सत्कार। आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन सौ सौ बार। आपका स्वागत बारंबार है अभिनंदन सौ सौ बार।
अपनों का अपनों द्वारा स्वागत बारंबार। हम सतीश भाई और ग्रुप का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गीत के लिए। और आपने तो हमें एक मनोहर दरबार में बिठा दिया, तो आप सबका भी मनोहर दरबार में बहुत 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 स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी रूपा बहन और जैसीमा भाई जो हमें ज्वाइन किए हैं, प्लीज उनका बैज और बुके से स्वागत करें। इसके बाद मैं हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई पटेल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्रह्मा कुमारी की जो हिस्ट्री है पिछले अबाउट 86 इयर्स की, उसको शॉर्ट में हम सबके सामने रखें। उसके बाद एक और डांस हमारे बीच में आएगा, ब्रदर नरेंद्र पटेल।
ओम शांति। बहुत ही सुंदर से कार्यक्रम में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स यहाँ पर जो आए हुए हैं, वे सभी अभी साइंस ने जो प्रगति की है उसका फल तो चख रहे हैं। हम सभी देख रहे हैं कि साइंस ने हमारे सामने बहुत सारी उपलब्धियां दे दी है। हमारे पास में एक स्विच ही दे दिया है, स्विच के आधार पर जितनी भी चाहिए उतनी सुविधाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। खाली एक स्विच की ही दूरी है, ऐसी कंडीशन में हम जी रहे हैं। सुख सुविधा के साधन होते हुए भी जैसे कि अंदर से जीवन के अंदर में कुछ खालीपना दिखाई देता है, कुछ कमियां दिखाई देती है, तो उसका कारण क्या है? एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार एक जगह पर, एक रिमोट प्लेस पर एक स्कूल थी, प्राइमरी स्कूल थी। उसमें एक बार इंस्पेक्शन आ गया, इंस्पेक्टर है तो एक क्लास में चले गए। क्लास में मैथ्स का पीरियड चल रहा था और मैथ्स के पीरियड में जाकर के वो बैठ गए। सडनली उन्होंने पूछा बच्चों को, बच्चे 5 और 4 मिला करके क्या होता है, व्हाट इज इक्वल टू 5 प्लस 4। तो सारे बच्चे चुप हो गए, लेकिन एक बच्चे ने पीछे से उंगली ऊपर की, बोले कि बताओ। कहते हैं साहब 5 और 4 मिला करके 8 होते हैं। ऐसे ही उन्होंने सुना तो थोड़े से नाराज हो गए। तो इतने में जो टीचर थे वो टीचर खड़े हो गए, बोला कि बच्चे लोग तालियां बजाओ, बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो वे बोल रहे थे कि अरे एक ही व्यक्ति ने, एक ही बच्चे ने जवाब दिया है, वो भी गलत दिया है, और फिर भी आप बोल रहे हैं तालियां बजाओ। वो कहते हैं साहब सुनो, हुआ ऐसा है, कल तक मैं इसी बच्चे को पूछ रहा था कि 5 और 4 मिला करके कितने होते हैं, तो ये 7 बोल रहा था, आज 8 पर तो आ गया, तो साहब कल 9 पर तो आ ही जाएगा। तो ये कंडीशन है हमारी। तो विज्ञान ने प्रगति तो की हुई है लेकिन भ्रामक है, इसी कंडीशन जैसी ही भ्रामक है। तो उसके लिए ही क्या किया जाए, इसके लिए ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए कार्य कर रही है। ब्रह्मा कुमारी इसके एस्टेब्लिश जो हुए वो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा के साकार तन के द्वारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की सन 1936 में। उसके बाद में बहुत सारी जो हिस्ट्री है, बहुत सारी हिस्ट्री तो मोहन भाई ने हमें बताई हुई है कि कैसे उसकी प्रगति होती गई, और इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस बन चुके हैं। नीचे में भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस है, शांतिवन है, मनमोहिनी वन है, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं जहां पर बहुत सारे भाई बहने आकर के कुछ अपने मेडिटेशन का अभ्यास करते हुए अपने जीवन को परिवर्तन करने का संकल्प लेकर के जाते हैं। और इसके अंतर्गत ही जो भगिनी संस्था बनी हुई है, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसके अंतर्गत बहुत सारी विंग्स के बारे में तो मोहन भाई ने बताया। उसमें से जो एक विंग है हमारी, ये साइंटिस्ट इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स विंग, इसका जो एस्टेब्लिश हुई है 1988 में, इस विंग का एस्टेब्लिश किया गया। बहुत सारे उद्देश्य को लेकर के ये विंग कार्य कर रही है। हमने साइंस के बारे में तो सुना, साइंस ने तो जितनी प्रोग्रेस की है वो फिजिकल प्रोग्रेस है, लेकिन आंतरिक जो प्रोग्रेस है उसके बारे में क्या किया जाए। तो आइंस्टाइन ने भी एक बार कहा था कि साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज लेम एंड स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। इफ बोथ ऑफ देम कम टूगेदर एंड प्ले एन कॉम्प्लीमेंट्री रोल देन द होल ह्यूमैनिटी विल गेट क्लोजर टू इट्स अल्टीमेट गोल। कौन सा है अल्टीमेट गोल? ऑफ पीस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सारे ही विश्व का एक ही गोल है, शांतिपूर्ण जीवन बसर कर सके, सुखरूप जी सके और प्रॉस्पेरिटी भी हो। ये सारे ही गोल को कवर करने के लिए दोनों के बीच में जो गैप है अभी जो हम देख रहे हैं, उस गैप को थोड़ा कम करते हुए दोनों को मिला देना, द कॉम्प्लीमेंट्री रोल ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, उसके लिए कार्य करना, ये मुख्य एम को लेकर के ये करते हैं। साथ में हमारे यहाँ पर खास करके भारत देश में तो हम देखते हैं कि सुपरस्टिशन बहुत है, अंधश्रद्धा बहुत बड़ी हुई है, तो अंधश्रद्धा को नाबूद करने का भी बहुत सारा प्रयास करना, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां साइंस के साधन होते हुए भी बहुत सारे लोग जो गांव के हैं या तो जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, तो वहां पर अंधश्रद्धा बहुत है। उसके तो बहुत सारे समाचार हम न्यूज़पेपर के थ्रू और हमारे टीवी और उसके थ्रू हम जानते ही है, देखते ही है, तो उसको नाबूद करना ये भी मुख्य एम लेकर के हम बैठे हैं। फिर अभी हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें सारे ही अलग अलग देश भी शामिल होते जा रहे हैं, एक बड़े ही विश्व युद्ध का रूप लेता हुआ जा रहा है, और उसमें खास करके हमारी ओर से ऐसे प्रयास किया जाए जिसके आधार पर विश्व में शांति हो। तो विश्व शांति का भी एम है कि सारे विश्व को उसी तरफ डायरेक्ट किया जाए जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है, जो कि मानव जात के नाश के लिए किया जाता है, उसके लिए उसके बदले में हम उसका पीसफुल प्रयोग करें। एक खास जो बात है कि फ्यूचर को ब्राइट बनाना, जो हमारा आज का इसका कॉन्फ्रेंस का भी मेन थीम है कि बेटर फ्यूचर को कैसे बनाया जाए, तो उसको ब्राइट बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी को हमारे जीवन में इनकलकेट कैसे किया जाए, उसके बारे में बहुत सारे प्रोग्राम्स और वो सारे उसका आयोजन करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, ये सारा भी जो बहुत कुछ है वो आयोजित किया जाता है। और एक सबसे अहम बात है जो आज का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, वो है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। जब से एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के बारे में कुछ बातें सुनते गए उसके बाद में, जब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डिकेड के रूप में 1992-2000 ईयर जो घोषित किया गया, उसके अंदर में विंग ने खास करके इसके बारे में कुछ स्पेशल ट्रेनिंग और वो सारा करवाते हुए उस अभियानों का आयोजन किया। कुल मिलाकर के 20 जितने अभियान उसमें निकाले गए जो कि अवेयरनेस को लिए हुए थे। उसमें जो मुख्य बात बताई गई थी कि रूट कॉज ऑफ द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इज मेंटल पॉल्यूशन। हमारा मन प्रदूषित हुआ है, हम थोड़े से स्वार्थी बनते जा रहे हैं, हमने बहुत ही प्रकृति का दोहन किया हुआ है। ये सारी बातों को जितना जितना हम कम करते जाएंगे उतना ही हमारा जो ये एनवायरनमेंट है बहुत ही अच्छा हो सकेगा। तो उसके बारे में भी ये किया। उसके बाद में भी हमने सबने देखा ग्लोबल वार्मिंग भी हुआ और उसके कारण कई प्राकृतिक आपदाएं भी आने लगी। तो 2005 से लेकर के फिर उसके बारे में भी डिजास्टर अवेयरनेस कैंपेन्स निकाले गए। कुल 15 जितने डिजास्टर अवेयरनेस कैंपेन, डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन्स निकाले गए। तो ये इसी प्रकार से एनवायरनमेंट के बारे में भी और अभी जो हो रहा है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके बारे में भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन यहाँ पर की विज्ञान भवन में, जो दिल्ली का विज्ञान भवन है, उसमें भी करके हुए अभी आयोजन करके सभी को जागरूक करने का प्रयत्न किया जाता है। अभी को मैं थोड़ा सा आपको दर्शाता हूँ कि विंग को जो अवार्ड्स मिले हुए हैं, ये पर्यावरण दशक में जो कार्य किया उसके पर्यावरण के अंतर्गत, तो 1992 में एचआरडी मंत्री जो थे अर्जुन सिंह के द्वारा हमारे विंग के चेयरपर्सन मोहन सिंगल भाई जी को पर्यावरण श्री का अवार्ड दिया हुआ था। यह 2004 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन फॉर वर्ल्ड पीस यूएसए के द्वारा भी एक इंटरनेशनल अवार्ड भाई श्री को प्रदान किया गया। और फिर यह 2013 में जो खास करके एनवायरनमेंट को करने के लिए जो कहते हैं कि वृक्ष को हम बोया जाए, वो बनाए लगाए जाए, एक एक पेड़ जो होते हैं तो वो पेड़ भी एक जीवन को देता है, क्योंकि ऑक्सीजन और ये सारी बहुत सारी बातें हैं। कहते हैं कि 50 साल का एक वृक्ष होता है तो वो पूरे जीवन भर में 15 लाख 70,000 इतने रुपए का मूल्य का हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो ये सारी बातों को लिए हुए जो वृक्ष बोने के वो करने के लिए जो पौधे लगाने के प्रति जो जागृति थी, उसके अंतर्गत दैनिक भास्कर ने एक अभियान निकाला था ग्रीन आइडोल, तो उसके ग्रीन आइडोल अवार्ड से भी भाई साहब को सम्मानित किया गया। तो ये सारे कार्य खास करते हुए हम विज्ञान की प्रगति के साथ में आध्यात्मिकता को भी जोड़ते हुए कार्य करते हुए ये साइंटिस्ट इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट विंग कार्य करता है। ओम शांति। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद दाता नरेंद्र जी। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे रिस्पेक्टेड सिस्टर रूपा बहन को कि वो अपने ग्रीटिंग्स इस प्रोग्राम के बारे में हमारे साथ शेयर करें। सिस्टर रूपा।
ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति। ओम शांति। हम सभी यहाँ पर अरावली पर्वत के बीचों बीच मौजूद इस ज्ञान सरोवर के परिसर में हमारे साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के इस कॉन्फ्रेंस में हम सभी यहाँ जो इस बार का हमारा टॉपिक है इस कॉन्फ्रेंस का, एनविजनिंग बेटर टुमारो, उसके लिए सब एकत्रित हुए हैं। तो हमारे डायस पर विराजमान हमारे सभी गेस्ट्स, स्पेशल गेस्ट्स और हमारे सीनियर्स को बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन, और साथ साथ जो भी आप सब देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सभी को भी हार्टी वेलकम हमारे इस परमात्मा के दिव्य दरबार में। विगत कई वर्षों से हम सब साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर मनन चिंतन करते हुए आगे के लिए हम सब फ्यूचर में क्या परिकल्पना हमारे स्वस्थिति यानी मानसिक स्थिति और साथ साथ कैसे हम हमारे मन के विज्ञान को समझ करके हमारे बाहर रूप की जो व्यवस्था है उसे हम किस प्रकार से बहुत अच्छी रीति सुचारू ढंग से उसको हम कार्यान्वित कर सके, उसके विषय पर अलग अलग कई कॉन्फ्रेंसेस और साथ साथ बहुत सारे हमारे जो भी अभियान निकाले जा रहे हैं। तो ये हमारा बहुत ही तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और ये साथ साथ शुभकामना है कि जिस मकसद को लेकर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर और जो कि इसका सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, नाम ही है राजयोगा एजुकेशन, और जो हम अगले 3 दिन के कार्यक्रम्स में अलग अलग सेशंस में हम सभी सुनेंगे कि जो मन का जो विज्ञान है, मन का जो साइंस है, इसके ऊपर जब हम गहरी उस विषयों पर जो हमें लेसन्स प्रदान की जाएगी और उसके ऊपर जब मनन चिंतन करके ऑब्वियसली हम सब यहां से कुछ विशेष अपने मन के अंदर वो एनर्जी एंड विजनिंग फॉर बेटर फ्यूचर के लिए वो जब हम तैयार करके निकलेंगे अपने आप को, तो उम्मीद है इस कॉन्फ्रेंस से ना ही सिर्फ हम जो यहां पहुंचे हैं हम लाभान्वित होंगे, परंतु हम जिस एरिया से आए हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो वहां पहुंच करके भी हम यहां के जो राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम किस प्रकार से अपने आने वाले भविष्य को अलग अलग रीति से, चाहे वो हमारे मन के विज्ञान का हो, और जब मन के विज्ञान का ज्ञान हमें सटीक रूप से हम समझने लगेंगे तो ऑब्वियसली हम बाहर जो भी हम जिस फील्ड में पर भी कार्यान्वित है, चाहे हम साइंटिस्ट है या चाहे हम इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या चाहे हम इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड ना भी हो, परंतु जो एजुकेशन फील्ड से है, तो वहां हम ऑब्वियसली इस ज्ञान को और इस मन के साइंस को, इस विज्ञान को हम जन जन तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। तो इसी 2 शब्दों के द्वारा मैं अपने ग्रीटिंग्स मैसेज को यहां पर विराम देना चाहती हूं, क्योंकि आगे के लिए भी हमारी और कई वक्ताएं हैं और जिन वक्ताओं से हम सुनेंगे। और विराम देने से पूर्व हम हमारे साथ जो गेस्ट आए हुए हैं नागालैंड के, जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, जो आप 3 टाइम मिनिस्टर रह चुके हैं नागालैंड के, साइंस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के भी आप रह चुके हैं, साथ साथ पावर डिपार्टमेंट के भी रह चुके हैं, और आप रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं, और साथ साथ आपको कई अवार्डों से नवाजा गया है। हमारे नागालैंड गवर्नमेंट की तरफ से भी आप विशेष कई अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। तो अभी मैं आग्रह करूंगी हमारे बीच में आए और हमारे आज के इस सेशन के स्पेशल गेस्ट श्री दोषे सैमा जी, आप अपना वक्तव्य प्रदान करें। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय इस सभा का अध्यक्ष महोदय, ऑर्गेनाइजर्स, एमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑन द डायस, BK sisters, scientists, engineers and architects. I feel humbled and great opportunity to stand over here to deliberate on the theme envisioning for better tomorrow. I'm given 10 minutes, but I'll try to conclude lesser than 10 minutes. Envisioning for a better tomorrow, I would like to ventilate my own thoughts. Envisioning for a better tomorrow, that means our current situation is not very conducive to live. I want to put it in other way, that envisioning beyond, I will have to create conducive atmosphere for the future, for my children, for my great-grandchildren. So that is envisioning beyond. To create something conducive atmosphere so that we live in peace and harmony. Now our main challenge is change of environment, global warming. God has not given to humans in this condition. God has given us everything in peaceful manner. It is believed that the earth was formed 4.54 billion years ago, plus minus 50 million. Humans appeared on this earth about 0.2 million, 2 lakh years ago. What God has created in 4.54 years, in 2 lakh years, human has destroyed about 50%. We are destroying our own nest. Now the climate has changed. Sometimes it rains, cats and dogs. The flood we are facing is, which has not happened in 40 years. Sometimes it is too hot. That is human's creation. Human has interfered into the creation of the Creator God. That has disturbed the equilibrium of coexistence. The nature is sufficient to provide us for our livelihood. But the nature resources which is endowed on its surface and subsurface are all depleting asset. Water is depleting asset, minerals are depleting asset. I remember when we visited scientists from overseas, and in them we visited Kolar gold field. Beneath the earth, we went down about 3.5 kilometers. The Chinese scientist told me, Sima, if this much of percentage of gold is discovered in China, we will mine it. But you are discarding it. You are throwing as undesirable materials. I told him, yes, you are more advanced in technology to destroy our earth. We have such a stiff competition in technology to extract 100% recovery. In other words, may we say that it is competition to destroy the earth. We have destroyed the earth by 50%. Now we are conquering the moon, the Mars. Conquering means systematically we are destroying. When we have destroyed 50% of our nest, we are finding very suffocating to live on the earth. And therefore, I really appreciate this, the theme, envisioning for a better tomorrow. We scientists, engineers and technocrats, we will have to seriously ponder upon what should we do from now, a positive change. The Honorable Chairman has mentioned a positive change. Shall we tell everything that we know so that more and more exploitation will take place, destroying our nest? Or shall we suggest for optimum capacity utilization? 1985, we mapped India, Kanyakumari to JNK, west to northeast. During that time, about nearly 1 month, we were in Udaipur, serving the entire area. During that time, only one marble factory was there in Ambaji. Few factories in Udaipur. We boasted that we discovered green marble, which is called serpentinite. We told the people, instead of going very far, you have this green marble in Udaipur, you mine it. We showed them huge deposits of low-grade marble that is called crystallized limestone. We saw then dolomite. Those are all finished. Here, there were a temple. The pillars are made out of granite, commonly called granite. It is nothing but dolerite. Scientifically, it is dolerite. Dolerite is finished because it is depleting asset. Makrana marble, the type of Taj Mahal marble, it is now depleted. We don't get. We scientists, engineers, architects will have to stop and think whether we will have to disclose everything that we know. Whatever we discover, whatever we invent, that is interference to the God's creation, disturbing the equilibrium of coexistence. When you see the residential buildings in Europe, in USA, in Australia, it is so beautiful, low cost building. It is small, but so beautiful, very attractive. You feel like getting in your arm. But when we come back to India, huge building. And many such buildings are abandoned. It looks haunted place. That is one area we need to ponder upon. The energy we're using, electricity, fuel, the consumption, we will have to think over. Degradation of forest, we need to replenish. Since forests are degraded, traditional wells are dried up, water is depleting asset. And therefore, now we need to focus seriously on optimum utilization, conservation, replenishing. The world belongs to everyone, rich or poor. Don't think that the world belongs to rich people. It is rich people who are destroying it. Sorry to say this. So we will have to limit our activities. That's what I think I've exceeded the time. So with this, I conclude. Thank you.
Thank you very much, brother, for your views on the conference theme. We would have liked to listen to you more, but due to shortage of time. Now, I request Kumari Shweta from Panipat to give us a short welcome dance. धन्यवाद कुमारी श्वेता आपका। एक बार जोरदार तालियों से श्वेता का हम अभिनंदन करते हैं, थैंक्स करते हैं। अब हम थोड़ा सा टाइम को और स्क्वीज करेंगे, जो भी हमारे अभी वक्ता रह गए हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ब्रदर जयसीमा। जैसा कि हम सुन रहे थे काफी समय से सोलर एनर्जी के बारे में, ब्रह्मा कुमारी इज डूइंग अबाउट सोलर एनर्जी। सो ब्रदर जयसीमा इज द मेन, आई कैन से द डिजाइनर फॉर द सोलर सिस्टम इन ब्रह्मा कुमारी अलॉन्ग विद वन ऑफ ब्रदर गोलो। सो आई वुड रिक्वेस्ट ब्रदर जयसीमा टू इन शॉर्ट गिव अबाउट व्हाट ब्रह्मा कुमारी आर डूइंग अबाउट सोलर सिस्टम।
ओम शांति। श्रद्धेय किरण दीदी, श्रद्धेय मोहन भाई साहब और हमारे विशिष्ट अतिथिगण, मेरे आदरणीय वरिष्ठ भ्रातागण और देश के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे भाई और बहने, मुझे जो दायित्व मिला है थोड़े समय के अंदर ब्रह्मा कुमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो विशिष्ट कार्य किया हुआ है उसके बारे में आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। एज ए सोशली एंड एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रह्मा कुमारी से एम्बार्क द जर्नी टू इंस्टॉल नॉवेल रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वे बैक इन 1990s। थैंक्स ए लॉट टू आवर विजनरी लीडर डॉक्टर दादी प्रकाशमणि जी, लेट दादी डॉक्टर प्रकाशमणि जी। सी इंस्पायर्ड अस टू यूज सोलार एनर्जी इन आवर इंस्टीट्यूट अप टू द ट्यून ऑफ लेट्स से 70-80%। एंड आई एम ग्लैड टू से दैट we are a pioneering institute. We used all kind of energy sources, but majority of energy comes from our solar energy. As you know, Mount Abu is a Brahma Kumaris headquarter and our extended campus is in Shantivan, where we attract more than 1 million people every year from around 150 countries. So it is a very good demonstration place for this kind of technology. So we are started installing solar steam cooking systems for our various campuses like Gyan Sarovar, Shantivan, Om Shanti Retreat Center. And in 2006, with the inspiration of our seniors, we conceived a project called India One Solar Thermal Power Project. This unique novel research project sponsored by Government of India and Government of Germany, it is an in-house developed project with concept to commissioning. Everything happened on site in Shantivan campus. In Shantivan campus, around 2 kilometers from Shantivan campus, this project locates, and it has a unique feature of indigenous, robust, long-lasting and locally manufactured technology. We use solar parabolic concentrator and we store the energy in the form of heat. Because as you know, energy storage is a critical technological development, and we achieved locally available iron, cast iron mass, and store the heat and convert that energy into electricity by pumping the water and creating the superheated steam for the night usage. Because solar is available only for 8 hours in a day, what we do in the night? So this is the project which actually cater for the night also. So it is a 24/7 project, and I welcome all of you to come and see this project. Apart from this, we are very active with collaborating with the various organizations. We recently concluded a supercritical CO2 research project sponsored by Government of India and our joint project partner Indian Institute of Science, Bangalore. We also concluded a project in stimulating Stirling engine by using solar concentrators with Indian Institute of Technology, Bombay. And apart from this, looking into our wealth of the knowledge in renewable energy sources, UNDP JEF sanctioned us 15 programs to train entrepreneurs, business people and academicians in our campus. So we concluded that also successfully. Apart from this, we now started an initiative which, as our organization wants to become, as our respected brother Mohan Singhalji said, that we treat the water and recover the water up to 80%. But now we also started to process solid waste management, because when people come to our organization, there is a certain amount of solid waste is developed and generated. So now we have initiated a project where we want to become a zero disposal solid waste institute. And we are installing a project in Shantivan where we process the solid waste in first segregation, then processing it in such a way that we create wealth from waste. Our Prime Minister Narendra Modi's vision hai, uske hisab se we are installing that project. So these are very unique features where we develop and demonstrate novel research projects in energy and environment. So abhi jo subject hai, envisioning a better future without science and technology and spirituality combination together, it cannot happen. So I welcome all of you. When you go back to your place, before going back to your place, please come and visit India One Solar Thermal Power Project, which has various technological initiatives and innovative design. And thanks a lot for providing me this such an opportunity. Om Shanti.
Thank you, Brother Jaisimha, for giving a brief information about solar system and non-conventional energy being used by Brahma Kumaris. आज हमारे बीच में हमारे एक गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर जे जे रावल. ही इज ए वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू गिव हिज बायोडाटा. इट्स ए वेरी लॉन्ग बायोडाटा. ही हैज बीन अवार्डेड विद मेनी अवार्ड्स. वन ऑफ द अवार्ड विच आई कुड फाइंड वॉज दैट ही वॉज अवार्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड फॉर popularization of science and technology, which is one of the unique award. So I welcome, before I ask him to share his views, ek chota sa ek hamare ORC mein, Om Shanti Retreat Center in Delhi, every year we are conducting one competition by NASA, that is space settlement competition. For I think about 15-16 years, continuously every year this competition is being organized there in the month of January. And this competition is basically only for school children. Science is thinking, NASA is thinking, all over the world they are thinking to have a new settlement in our galaxies, and especially for the Mars. उस कंपटीशन में क्या होता है कि बच्चों को 3 दिन के लिए दे हैव बीन आइसोलेटेड. वो आइसोलेट करके उनको रख दिया जाता है. वो ग्रुप्स में आते हैं फ्रॉम स्कूल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, और वहां आकर के वो प्रोजेक्ट बनाते हैं एक कि स्पेस पे सेटलमेंट कैसे किया जाए. अच्छे अच्छे व्यूज उनके बच्चों के आते हैं. इन वन ऑफ द कंपटीशन आई वॉज ऑल्सो देयर एज ए जज. फिर जब वो अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो प्रेजेंट करते हैं बिफोर द ज्यूरी, और उसमें वो बताते हैं कि कैसे कैसे हम स्पेस में सेटलमेंट करेंगे. एक बच्चा जो सेवन स्टैंडर्ड का था वो प्रेजेंट कर रहा था अपने प्रोजेक्ट को. सिंस राहुल साहब इज कमिंग एंड गिविंग हिज व्यूज ऑन द प्लेनेटरी, तो मुझे लगा कि वो, तो उस बच्चे ने कहा कि जब हम स्पेस पे सेटलमेंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन बनाएंगे वहां पर. एंड वी वर ऑल सरप्राइज कि हाउ कम, व्हाट फॉर ही वांट्स ए पुलिस स्टेशन, जबकि वी आर ऑल साइंटिस्ट आर थिंकिंग कि हम एक नई दुनिया बसाएं जाकर के वहां पर. तो उसे पूछा कि व्हाई यू वांट पुलिस स्टेशन, एंड वी वर ऑल शॉक टू नो हिज व्यूज. तो उसने आंसर पता क्या दिया राहुल साहब, कि सर हम वहां पर इंसान कहां से लेके जाएंगे. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट. इंसान कहां से लेके जाएंगे, तो उसने कहा कि सब, क्योंकि इंसान तो हम इसी धरती से लेके जाएंगे, तो सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन बनाएंगे वहां पर जाकर के. तो दिस इज द आई मीन व्यूज फॉर बेटर टुमारो. आई रिक्वेस्ट राहुल साहब टू शॉर्ट टाइम में, टाइम की थोड़ा कंस्टेंट है हमारे, हम आपको बहुत कुछ सुनना चाहेंगे आगे भी चल के, तो आप अपने व्यूज इस कॉन्फ्रेंस के बारे में. राहुल साहब.
ओम शांति. परम आदरणीय, परम पूज्य दीदी और ये सिंगर साहब और ये अपने सुरेश भाई और हमारे बीच में जो ये हैं श्यामा साहब और अपने अग्रवाल साहब, इंद्रानी, बीके इंद्रानी एंड और ये सब, ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी और भाई और बहन, इधर बहुत सुंदर आध्यात्मिक माहौल में आकर हकीकत में बहुत आनंद हुआ है, बहुत खुशी हुई है. और हमारी जो संस्कृति है वो ज्ञान विज्ञान की वैश्विक संस्कृति है और उसका जो लाइफलाइन है वो ज्ञान विज्ञान है और विज्ञान ज्ञान का एक भाग है और ये अपनी दुनिया और विज्ञान जो रफ्तार से चल रहा है वो रफ्तार से यदि आध्यात्मिकता नहीं चलेगी और तो है ना ये विज्ञान विनाश कर सकता है. तो विज्ञान का उसमें दोष नहीं है. विज्ञान कुदरत को बताता है, कुदरत के अलग अलग रूप को बताता है, लेकिन ये हमारी जो मगज की विकृति है ये न विज्ञान का दुरुपयोग करती है. नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र मिह विद्यते, कृष्ण भगवान कहते हैं और ये वेद में कहा है कि ज्ञान देवतु कैवल्यम, ज्ञान अलोन, नॉलेज अलोन कैन लिबरेट. और ये है न ज्ञान की महत्ता है और ये ज्ञान है तो आध्यात्मिकता आएगी और आध्यात्मिकता के सिवा किसी इंडिविजुअल का और किसी देश का न उद्धार होने वाला नहीं है. वो तो होना ही चाहिए. और अभी आप देखें कि हमारा भारत कई बाबतों में प्रथम था. आई कैन एनुमरेट 1 to 10. और पहला जो कैलेंडर बना ब्रह्मांड का वो अपना है ना अदिति कैलेंडर बना 8,000 साल पहले. और बाद में ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद प्रथम ग्रंथ है दुनिया का और उसमें क्या है, उसका प्रथम श्लोक है कि अग्निमीरे पुरोहितम अग्नस्य देव मृत्युजम होतारम व्रतधातु. अग्नि की पूजा. अग्नि कौन है? ऊर्जा. अग्नि कौन है? ब्रह्म का स्वरूप, ये ईश्वर का स्वरूप. उसमें कुछ भी डालो, लड्डू डालो तो भी वो स्वाहा करेगा और आप उसमें मृत देह डालो वो भी स्वाहा करेगा. क्यों? कि वो ब्रह्मन स्वरूप है और ये महाचेतना है ब्रह्मांड की. ये जो ब्रह्मांड है वो अग्नि कुंड है और हम लोग हैं वो भी, हमारा शरीर भी अग्निकुंड है। तो ये सब ज्ञान और आध्यात्मिकता, ज्ञान के बिना आध्यात्मिकता नहीं आ सकती, और उसमें विज्ञानियों का कोई दोष नहीं, क्योंकि वो कुदरत का रूप जानना चाहते हैं, आपके सामने रखते हैं आपका क्या ये करना है, कैसा उपयोग करें। अभी आजकल बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात हुई कि यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, मतलब कि बिग बैंग से, लेकिन हमारे ऋग्वेद में ये नासदीय सूक्त है, उसमें बताया गया कि उसमें ब्रह्मांड के बारे में विचार किया गया। आज से 6,500 साल पहले ये ब्रह्मांड के बारे में विचार करना बहुत बड़ी बात होती है। ना सदासिन्नो सदासित तदानिम नासी द्रदोनो व्योमा प्रवृत्त, आप ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि एक का कॉस्मिक फायर बॉल था, वो अपने आप को ना विस्तृत करने लगा अपनी इच्छा से, और वो कॉस्मिक फायर बॉल किधर था, ऊपर था नीचे था इधर था उधर था, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके बाद ही अंतरिक्ष अस्तित्व में आया, समय अस्तित्व में आया। उसके पहले न तो प्रकाश था न तो अंधकार, न तो मृत्यु था न तो जीवन था। तो ये ऐसी बात है ना, ये हमारे लोगों ने कही, और उसने ग्रीक विद्वानों ने क्या कहा कि ये ब्रह्मांड चार तत्वों में बनेलू है, पृथ्वी जलवायु अग्नि, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हम ऋषि मुनियों को क्यों याद करते हैं कि उसकी जो धारा थी विचारधारा, वो ये ना ब्रह्मा कुमारी की विचारधारा है, और ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं हैं तो ही ये ना ये भारत आगे बढ़ेगा, क्यों कि वो आध्यात्मिकता की जरूरत है। तो हम ये बोलते हैं कि ऋषि मुनियों को इसलिए याद करते, उसने क्या कहा कि ब्रह्मांड पांच तत्व में बने, पंच महाभूत, और उसमें ना आकाश अंतरिक्ष, और आज हमें मालूम है कि अंतरिक्ष ये ना अपने अपने सामने सब कुछ देकर आया है, लेकर आया है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम स्पेस एंड इनटू स्पेस इट रिटर्न्स, स्पेस इज बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एवरीथिंग। तो यही स्पेस को समझना, ये आध्यात्मिकता को समझना, ब्रह्मांड को क्यों समझते हैं, ये विशाल विश्व जिसका ना डायामीटर करीब 30 बिलियन लाइट ईयर्स है, लाइट टेक 30 बिलियन ईयर्स इन क्रॉसिंग अवर ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स, इतना बड़ा है ये ब्रह्मांड, उसमें कितनी बड़ी गैलेक्सी और तारे, और इवन सूर्य का कोई महत्व नहीं, इवन गैलेक्सी का महत्व नहीं। ये समझो कि हमें क्या करना है, यदि जो सूर्य का महत्व नहीं तो क्या करेगा हम लोग, और यही आध्यात्मिकता है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चित्रण देवा नाम दुरानिकम चक्षुर्मत्र से वरुण श्याग्ने आपरा दियावा पृथ्वी सूर्य आत्मा जगत तस्तानी द सोल ऑफ द वर्ल्ड, और ये सूर्य यानी ये ईश्वर का प्रतिनिधि है, बाबा का प्रतिनिधि है समझो, ये ना ये समझना चाहिए। और हमारे आगे तो हम जब ही निशानी बताएंगे तो हम बंद करेंगे, क्योंकि हम लोग का तो यही बात है। तो अपने आप देखें कि हमारे लोग क्या बोलते थे कि एक सदवी प्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, लेकिन ये विद्वान लोग अलग अलग रूप से उसको अपने सामने रखते हैं। तो आप देखें कि ये जो एक दो बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए बहुत रास्ते हैं, इसलिए सत्य को पाने के लिए भी बहुत रास्ते। कई तो लोग बोलते हैं कि अरे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता है, अरे भी 33 करोड़ क्या, 144 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि वो छूट है, क्या करना है आपको, क्योंकि आखिरी में वो आध्यात्मिकता और फिलोसॉफी पर मदार करता है, वो संकुचित नहीं है। इस बात को देखें तो उनके साहब ने बातचीत किया कि हम यत्र विश्वम भवती एक नीनम, आप ब्रह्मांड एक नीच एक नेस्त है, और हम लोग उसके देवासी है, जो पृथ्वी है वो एक नेस्त है, और ये जो एक ही वायुमंडल है हमारा, एक ही तारे देखते हैं हम लोग, एक ही यानी आकाश है, तो ये वैमनस्य क्यों, ये देश देश के बीच में वैमनस्य क्यों और लोगों के बीच में? तो यही जो ज्ञान लेना है, तो ऐसी कोई ब्रह्मा कुमारी जैसी जो संस्था है वही आपको दे सकते। तो हम एज ए साइंटिस्ट, मुझे मालूम है कि यदि मैं आध्यात्मिक नहीं होता ना, तो मैं ये इस तरह पर नहीं जा सकता। इस बार वो एनवायरमेंट की बात की, हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे एनवायरमेंट को हैंडल किया था, गेहूं शांति अंतरिक्ष गुण शांति ही पृथ्वी शांति रापा शांति रो खदय शांति वनस्पत शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगु शांति कौन है, सबको शांति चाहिए, पंचमहाभूतों को शांति चाहिए, तो आज हम उसको खलेल पहुंचाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो हम कैसे सुखी रहेंगे? अवर अर्थ हैज बीन फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, पावर पॉइंट प्रॉब्लम, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनर्जी प्रॉब्लम, आतंकवाद, क्या नहीं है? और आतंकवाद और ये सब के लिए ना एक ही उपाय है कि आप आध्यात्मिक बने और ऐसी संस्था में जाए और ज्ञान ले, तो ही ये हो सकता है। और ये ना, ये आपको शायद मालूम होगा कि ये अपना कवि कालिदास शाकुंतलम स्वरूप की दशे होता है, नकल नकल उबान सन्निपात्यो यमस्मिन ज्योनि मृग शरीरे पुष्पराज आगे। ये दुष्यंत राजा अपने धनुष पर बाण चलाते हुए कर्म ऋषि के आश्रम में आता है, क्यों आता है? मृगला को मारने के लिए। तो दो छोटे छोटे ब्रह्म कुमार ने क्या बोला कि राजा आप क्या कर रहे हैं अग्नि में, या नहीं ये गुलाब के उनके फूलों के ढेर में आप आग लगाते हैं, ऐसे ही ये कार्य है। तो ये सब है ना, हम लोग ये आध्यात्मिकता से सीखते हैं, बहुत कुछ है ना ये बोलना होता है ऐसे विषय पर। इधर ये मेरे को इन्विटेशन दिया, मेरे को और भी पवित्र करने के लिए इधर ये इन्विटेशन दिया, इसलिए हम सबको और महानुभावों को आप सबको हम नमन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई साहब का। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच डायरेक्टर CPWD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर दिवाकर अग्रवाल जी का, कि वो आकर के अपने ग्रीटिंग्स इस प्रोग्राम के बारे में देंगे। थोड़ा टाइम को हम एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इसके बाद फिर लास्ट में अपने जो गेस्ट आए हैं उनको थोड़ा ऑनर भी करना है, उनको गिफ्ट्स भी देनी है, तो उन सबको देखते हुए हम थोड़ा टाइम एडजस्ट कर रहे हैं इसमें भी। तो डॉक्टर मिस्टर दिवाकर अग्रवाल जी, डायरेक्टर CPWD।
ओम शांति। रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज, डियर गेस्ट एंड फेलो सीकर्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर, बात यह है कि जैसे भाई जी ने बताया था कि वो बच्चा जो 5+4 को 8 बता रहा था और टीचर ने उसकी तारीफ की, कम से कम वो जोड़ तो रहा था। आज के युग में बहुत सारे लोग जोड़ना भूल चुके हैं, वो केवल घटा ही रहे हैं, और उनके हिसाब से 5+4 का आंसर 1 है और जल्दी ही ये शून्य पे पहुंच जाएगा। एक बार एक जंगल में भयंकर आग लगी हुई थी और एक पक्षी पास के पानी के सोर्स से अपनी चोंच में पानी भर के उस आग के ऊपर उड़ के जाता था, आग के ऊपर डाल देता था, और पूरे दिन वो यही काम करता रहा। शाम को किसी ने उस पक्षी से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो, इससे क्या फायदा हो रहा है, ये आग तो बुझने वाली नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये आग बुझेगी या मेरे बुझाने से बुझेगी या नहीं बुझेगी, इंपॉर्टेंट यह है कि भविष्य में मेरा नाम आग बुझाने वालों में आना चाहिए। आग लगाने वालों में नहीं। ब्रह्म कुमारी और ज्ञान सरोवर संस्था इस डायरेक्शन में बहुत सारा काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर हम लोगों को किस लिए इकट्ठा किया गया है? इसलिए कि आप सबने, हमने अपने कदम बढ़ा दिए हैं टुवर्ड्स ए बेटर फ्यूचर। आप भी इस यात्रा, इस जर्नी का हिस्सा बन गए हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे मैं यहां तक पहुंचा। बीके पीयूष भाई और गिरिजा दीदी लगातार सीपीडब्ल्यूडी के डायरेक्टरेट में प्रोग्राम करते रहते हैं, हर वर्ष उनका प्रोग्राम होता है। और इस वर्ष 1 मई 2023 को डेवलपिंग इनर पावर एंड स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इस प्रोग्राम में सीपीडब्ल्यूडी के डायरेक्टर जनरल और अन्य अधिकारी और स्टाफ के मेंबर्स ने बड़े उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया। प्रोग्राम वॉज वेरी सक्सेसफुल। इसकी चर्चा ऑफिसर्स और स्टाफ मेंबर्स टाइम टू टाइम अक्सर करते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से ऑफिसर्स के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का ये अद्भुत प्रयास है। इसकी सफलता में पीयूष भाई और गिरिजा दीदी के प्रयास और दृढ़ संकल्प का महत्वपूर्ण योगदान है। सीपीडब्ल्यूडी की नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी में इनके प्रोग्राम लगातार चलते हैं। सीपीडब्ल्यूडी परिवार इनका आभारी है। मैंने बीके सेंटर लोधी रोड में कई प्रोग्राम इनके माध्यम से अटेंड किए हैं। अब मुख्य विषय पे, एज वी गैदर इन दिस सेक्रेट स्पेस गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ लव, पीस एंड स्पिरिचुअल विजडम, वी आर रिमाइंडेड ऑफ द प्रोफाउंड पोटेंशियल वी होल्ड विद इन अवर सेल्व टू शेप ए ब्राइटर टुमारो। फ्यूचर इज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ प्रेजेंट्स। सबको एक अच्छा बेस्ट प्रेजेंट चाहिए, इसीलिए हमें बेटर फ्यूचर के लिए काम करना है। कंटिन्यूअस एफर्ट्स टुवर्ड्स टुमारो दैट इज बेटर देन टुडे, लीडिंग टू बेटर प्रेजेंट एंड कल्मिनेटिंग इनटू बेस्ट प्रेजेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। द वर्ल्ड वी लिव इन इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस एंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज। However, it is crucial to recognize that the power to transform our future lies within each one of us. By embracing certain ingredients, we can pave the way for a world of compassion, harmony, and sustainable progress. I am here as a learner to learn from each one of you. I will briefly touch upon 10 ingredients to set the ball rolling for further discussion and deliberations in this conference. वैसे तो जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं या जो साइड में बैनर्स लगे हुए हैं इन पे लिखे हुए हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। फिर भी मैंने जो 10 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं वो मैं आपको वेरी ब्रीफली आपको बता देता हूं। स्पिरिचुअलिटी एंड इनर अवेकनिंग। द फाउंडेशन ऑफ ए बेटर फ्यूचर बिगिन्स विद नर्चरिंग अवर इनर सेल्फ। इनर अवेकनिंग फॉस्टर्स ए deeper connection with others and promotes empathy, thereby enabling us to build a more understanding and tolerant world. We work from part to whole. Meditation is essential for this. We must start early with meditation, dwelling in our inner self. Be filled with positive thoughts. Sustain this state throughout the day. Second point is love and kindness. Third point is education and knowledge. Fourth is environmental consciousness. Fifth is equality and inclusivity. Sixth is पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, सेवेंथ इज टेक्नोलॉजी फॉर गुड. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज अवर लाइव्स पॉजिटिवली बाय यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड. वी कैन एड्रेस सोसाइटल चैलेंजेस, इंप्रूव हेल्थ केयर, एनहेंस कम्युनिकेशन एंड प्रमोट ओवरऑल वेलबींग. एट पॉइंट इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सेल्फलेस सर्विस वी आर टॉकिंग अबाउट. नाइन्थ इज रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी. टेंथ इज होप एंड विजन. इन कंक्लूजन, द इनग्रीडियंट्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर आर नॉट इल्यूसिव और बियॉन्ड अवर ग्रास्प. बाय कल्टिवेटिंग स्पिरिचुअलिटी, लव, एजुकेशन, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, इक्वालिटी, पीस, टेक्नोलॉजी फॉर गुड, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, रेजिलियंस एंड होप, वी कैन क्रिएट ए वर्ल्ड दैट इज वर्दी ऑफ अवर चिल्ड्रन एंड फ्यूचर जनरेशंस. लेट अस एम्बार्क ऑन दिस जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैंड इन हैंड, गाइडेड बाय द लाइट ऑफ विजडम, टू मेक अवर शेयर ड्रीम्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर कम ट्रू. दिस जर्नी ऑफ ए बेटर फ्यूचर विल प्रोबेबली कल्मिनेट इन सतयुग. थैंक यू ऑल एंड मे प्योरिटी एंड पीस बी विद यू विद ऑल ऑफ अस. ओम शांति.
थैंक यू ब्रदर फॉर योर व्यूज ऑन द सब्जेक्ट. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लास्ट ऑफ द प्रोग्राम. इससे पहले कि हम अपने लास्ट प्रोग्राम को ले, मैं हमारे बीच राजयोगिनी किरण दीदी जो काठमांडू नेपाल से आई हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना ग्रीटिंग्स शॉर्ट में हम सबके बीच में रखें. राजयोगिनी बीके किरण दीदी जी.
ओम शांति. आप सभी भी प्यार से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जो शिव बाबा पिता परमात्मा हमारी सभी आत्माओं के पिता हैं, उसी पिता की प्रिय संतान, आज के इस कार्यक्रम में मंच में उपस्थित हमारे प्रमुख अतिथि जी, आदरणीय हमारे मोहन सिंगल भाई जी और अन्य मंच में उपस्थित अतिथि वक्तागण और साथ में उपस्थित हमारे भारत देश और नेपाल देश से पधारे हुए हमारे सभी मेहमान, इसी के साथ ही हम सभी के बहुत ही अति महत्वपूर्ण बातें सुन रहे थे. अगर उन बातों को हम अपने जीवन में उतार लें, अपने जीवन में इन बातों को धारण करें, तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय और शांतमय बन सकता है. इसी के साथ ही मैं अपने थोड़े से शब्दों को एक स्टोरी के माध्यम से शुरू करना चाहूंगी. कहते हैं एक दरबार में एक राजा था. राजा अपनी बेटी के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में बहुत ही खुश से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था. परंतु जब उसकी बेटी की शादी का समय आया, उसने पंडित को बुला करके जब उसकी कुंडली दिखाई, तो पंडित ने क्या कहा कि आपकी बेटी के भाग्य में सुख नहीं है, इसका विवाह जो है एक कोड़ी के साथ में आपको करना पड़ेगा. राजा बहुत दुखी हुआ, बहुत चिंतित हुआ. परंतु उसकी कुंडली के अनुसार राजा ने उसका विवाह एक कोड़ी व्यक्ति के साथ कर दिया. परंतु जो उसकी बेटी थी अपने पति के साथ में बहुत ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगी. वो कभी भी अपने जीवन में उसने दुख महसूस नहीं किया, क्योंकि उसने सोचा कि ये मेरा एक भाग्य है, इसी के साथ में दोनों, जब वो कोड़ी और उसकी राजा की बेटी एक जंगल की तरफ में जा रहे थे, तो तभी कोड़ी को बड़ी प्यास लगी और उसने अपनी पत्नी को कहा, मुझे पानी चाहिए। इतने में ही थोड़ी दूर में ही पानी था। जब वो उसकी वाइफ पानी लेने के लिए गई, पानी लेकर के जब वो वापस लौटी, तो बड़ा ही विचित्र एक, क्या कहें, अनुभव था। उसका जो पति कोड़ी था, उसका कोड़पन बिल्कुल समाप्त हो गया था। वो अच्छी तरह से बड़ा खुशी होकर के बैठा हुआ था। परंतु जब उसकी पत्नी आई, तो उसने उसको देखकर कहा, तुम तो मेरे पति नहीं हो, मेरा पति तो कोड़ वाला था। और वो कैसे विश्वास दिलाए? उसने कहा कि ये जो सामने में एक नदी बह रही है, इसमें मैंने टुपटी लगाई, इसमें मैं नहाया और इससे मेरा कोड़पन समाप्त हो गया। अब उसकी पत्नी विश्वास नहीं करी कि ये पानी से मेरा पति का कैसे कोड़पन समाप्त हो सकता है। इतने में एक आकाश में एक कौआ उड़ रहा था। कौआ हम सब जानते हैं काला होता है। तो एक कौआ जब आता है तो उस पानी में चुपकी लगाता है और वो कौआ जो काला था वो सफेद हंस बन करके उस पानी से निकल पड़ता है। वो जब उसकी पत्नी देखती है तो बड़ी हैरान हो जाती है कि इस पानी में क्या जादू है। फिर भी उसको विश्वास नहीं आता है। इतने में फिर एक आकाश से उड़ता हुआ एक कौआ आता है, फिर उस पानी में चुपकी लगाता है। वो भी एक जो कौआ है वो एक हंस सफेद बन करके निकल जाता है। पीछे से आवाज आती है, कागो हंस होए, कागो हंस होए, कागो हंस होए, ऐसे पीछे से आवाज आती है। तो उसकी जो पत्नी थी बहुत खुश हो गई कि इस पानी में जादू है, मेरा पति का जो कोड़पन है इसमें नहाने से, इसमें टुपकी लगाने से वो अच्छा हो गया। मेरा इस स्टोरी के माध्यम से कहने का भाव अर्थ ये है कि आप सभी, हम सभी कहाँ बैठे हुए हैं? हम सभी बैठे हुए हैं ज्ञान सरोवर एकेडमी हॉल में बैठे हुए हैं। तो इसमें हम क्या करने के लिए आए हैं? टुपकी लगाने के लिए आए हैं। इस मान सरोवर में हम टुपकी लगाने के लिए आए हैं। जो हमारी आत्मा इस निधार में प्रवेश करती है, अपनी आत्मा को, जो हमारी आत्मा एक कौए के समान काली बन गई है और स्वच्छ बन गई है और पवित्र बन गई है, इसी मान सरोवर में, ज्ञान सरोवर में अपनी आत्मा को शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ, ज्ञानवान बनाने के लिए हम सभी इस ज्ञान सरोवर में पधारे हैं। तो इसलिए आप सभी भाई बहनों के प्रति मेरी यही ब्लेसिंग है, मेरी यही शुभकामना और भावना है कि आपका जो 4 दिन का सेशन चलेगा उसमें अच्छी तरह से इस ज्ञान को भरपूर कीजिए और अपनी आत्मा को ज्ञान से भरपूर कीजिए। जो कौए के समान हमारी आत्मा बन गई है उसको एक हंस के समान बना करके जाए। जब हम घर में जाए, क्योंकि घर में तो जाना है, गृहस्थी जीवन है, भगवान ने घर बार छोड़ने के लिए तो हमें नहीं कहा है, तो जब हम घर में जाए तो हमारे परिवार वाले सचमुच यही समझें कि आप कहाँ होकर के आए हो, आपके जीवन में तो बड़ी सुख शांति आ गई है। पहले तो हमारे पति जी, हमारी श्रीमती जी बहुत क्रोध करते थे, अब तो इनमें क्रोध ही नहीं है, बड़े शांत मूर्त बन गए हैं। तो ऐसे शांत मूर्त बन करके हम इस ज्ञान सरोवर से जाए और यही लक्ष्य लेकर के अपने अपने स्थानों पर फिर हम जाएंगे। यही आप सभी भाई बहनों के प्रति मेरी शुभकामना और भावना है। इसी के साथ ही मोहन सिंघल भाई जी ने हमको बुलाया, भारत देश से भी आए हैं और हमारे देश नेपाल से भी, इतनी दूर से, इतनी दूर स्टेट से भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। ये चांस हमें आदरणीय हमारे मोहन सिंगल भाई जी ने दिया। मोहन सिंगल भाई जी के लिए एक बार हम ताली बजा करके आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ही अपने थोड़े से शब्दों को यहीं अंत करना चाहूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी का, आपने अपने आशीर्वचन हम सबको दिए और आशा करते हैं कि आप सब इन आशीर्वचनों को आत्मसार करेंगे और जो इन्होंने एक ब्लेसिंग दी है कि आप इस ज्ञान सरोवर में डुबकी लगा करके अपने जीवन को भी शांत में सुख में बनाएंगे। अब कार्यक्रम के अंत में हमने बहुत कुछ सुना, 3 मिनट के लिए हम लोग, मैं आदरणीय बीके किरण बहन जी को, इंदिरा बहन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर के हमें मेडिटेशन कराएं। इसके बाद आप सब प्लीज बैठे रहेंगे, आपको ईश्वरीय सौगात भी दी जाएगी, मंच पर हमारे जो मेहमान हैं उनको भी सौगात दी जाएगी, आप सबको भी सौगात दी जाएगी, आप कृपया बैठे रहें। ओम शांति,
ओम शांति। मंचासीन हमारे सर्व वरिष्ठ दीदियां और भ्राताएं ब्रह्मा कुमारी की, और विशेष रूप से आमंत्रित हमारे अतिथिगण और साथ ही साथ सभा में उपस्थित पूरे भारत और नेपाल से आए हुए हमारे देवी भाई बहने, हम दिन भर में या आपसी वार्तालाप में सेल्फ शब्द का बहुत उपयोग करते हैं। हम कहते हैं इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जीना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए, एक इंसान को सेल्फ एम्पावर्ड होना चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो शब्द हम अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं इसका हिंदी अनुवाद पूछूं तो क्या जवाब आएगा? सेल्फ रिस्पेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? आत्मसम्मान। सेल्फ कॉन्फिडेंस को आत्मविश्वास, सेल्फ एम्पावरमेंट को आत्म सशक्तिकरण, सेल्फ कंट्रोल को आत्म संयम, सेल्फ डिसिप्लिन को आत्म अनुशासन। हर बार अंग्रेजी के सेल्फ शब्द को हिंदी में जब अनुवाद करना है तो हिंदी का कौन सा शब्द इस्तेमाल हो रहा है? आत्मा। लेकिन अगर आत्मा का ज्ञान न हो तो क्या सही रीति से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है? सेल्फ एम्पावर्ड हो सकते हैं? जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट आ सकता है? नहीं। और इसलिए ये सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन जो वास्तव में बुनियादी इंग्रेडिएंट्स है फॉर अ बेटर फ्यूचर, तो अगर ये इंग्रेडिएंट्स हम चाहते हैं हमारे जीवन में आए तो हम सेल्फ में पहले झांकें। और ये क्या है सेल्फ? आत्मा। क्या है आत्मा? तो सेल्फ शब्द से ही सब कुछ पता चलता है। हाउ डू यू स्पेल सेल्फ? SELF, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, एक रूहानी ऊर्जा, एक रूहानी शक्ति जो किस स्वरूप में है? ज्योति स्वरूप में। तो अभी हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें स्वयं को ज्योति स्वरूप सितारे के रूप में देखते हुए परम ज्योति परमात्मा से कनेक्ट होंगे और तब कहीं जाकर रियल सेंस में हम सेल्फ एम्पावर होंगे और सेल्फ एम्पावर होके फिर बेटर फ्यूचर को क्रिएट करने में हम बहुत ही समाज को बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो सब तरफ से मन बुद्धि को हटाकर अपने मस्तक के बीचों बीच जहां हम तिलक करते हैं जिसे भ्रुकुटी कहते हैं, वहां मन बुद्धि को केंद्रित करें और वहां उपस्थित चैतन्य शक्ति आत्मा की चैतन्यता को फील करें। ये चैतन्य शक्ति एक दिव्य सितारा है, एक प्रकाश का पुंज है, यही मैं आत्मा हूँ, सेल्फ हूँ, और स्वयं के आत्मा के दर्शन करके आत्मा की चैतन्यता को मैं अनुभव कर रही हूँ। आत्मा का प्रकाश एकदम शीतल है, कूल एंड काम। आत्मा स्वयं में बुनियादी गुणों को धारण किए हुए है। आत्मा शांत स्वरूप है, शांति के वाइब्रेशंस अनुभव करें, प्रेम आत्मा का निजी स्वभाव है, प्रेम के प्रकंपन अनुभव करें, अपने स्वरूप दर्शन और अपने सगुण के अनुभव के साथ मैं स्वयं को एकदम हल्का अनुभव कर रही हूँ, और इस हल्की स्थिति के साथ मैं आत्मा दिव्य सितारा अपनी रोशनी फैलाते हुए इस भ्रुकुटी से निकलकर ऊपर की ओर चलते हूँ, ऊपर जहाँ हमारे परम पिता रहते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं ऊपर वाला जाने, वो पिता परमात्मा इस नीले आसमान की दुनिया से पार एक प्रकाश की दुनिया में निवास करते हैं। मैं उस दुनिया की ओर जा रही हूँ, जाते जाते पहुँच गई हूँ उस दिव्य प्रकाश में दुनिया में, जहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, दूर दूर तक शांति ही शांति है, स्वीट साइलेंस का गहन अनुभव करें, और ठीक मेरे सामने मेरे पिता परमात्मा एक परम ज्योति के रूप में विद्यमान है। देखिए उनकी सुंदर मनोहर प्रकाशित छवि को, उनकी सुंदर छवि को निहारते निहारते उनसे निकलने वाली प्रकाश किरणों को स्वयं के भीतर भरें, उनसे निकलने वाले गुणों के प्रकंपनों को अनुभव करें। यह बहुत ही सरल विधि है सेल्फ को एम्पावर करने की, और एक बार सेल्फ एम्पावरमेंट हो जाए, बेटर फ्यूचर के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो अपने आप जीवन में विकसित होते हैं। तो एक बार पुनः परम पिता के सानिध्य को अनुभव करते हुए उनकी किरणों को, उनके प्रकंपनों को भीतर में भरते हुए और स्वयं को भरपूर महसूस करते हुए हम लौट आते हैं अपने नीले आसमान की दुनिया में। देखें आत्मा भरपूर होकर झिलमिल प्रकाश फैलाती हुई नीचे उतर रही है और उतरते उतरते वापस इस देह में रुकुटी सिंहासन पर विराजमान। मैं सेल्फ एम्पावर्ड सोल हूं, आत्मा हूं। इसी आत्मस्मृति के साथ हम कर्म भूमि पर कर्म करने के लिए तैयार। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय दीदी का इस अलौकिक अनुभव के लिए। अब हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आपसे अनुरोध है इसी शांति की स्थिति में आप विराजमान रहें। हम अरेंजमेंट अनाउंस करेंगे। पहले हम अपने जो मंच पर हमारे अतिथि हैं उनका अभिनंदन करेंगे ईश्वरीय सौगात के साथ। उसके साथ आप सबको भी सौगातें मिलेगी। मैं बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया वो मंच पर हमारे मेहमानों का